नमस्कार भारत, 29 जनवरी दिन सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। यमन में अब सरकार और अलगाववादियों के बीच छिड़ा संघर्ष, गृहयुद्ध के कारण पहले से भूख से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ीं। आज से शुरू हो रहे भारतीय संसद के बजट सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना, उठेंगे कई मुद्दे।
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और डिमोनेटाइजेशन के दौरान और भी स्थिति खराब हुई है छोटे उद्योगों की, इसको ठीक करने का एक प्रयास होगा ये आखिरी बजट।
होगी अखबारों की समीक्षा, पाकिस्तान से वुसतुल्ला खान की डायरी और सुनाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। सहायता समूहों का कहना है कि यमन के अदन में शुरू हुई नई लड़ाई से हालात और खराब हो सकते हैं। अदन के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधिकारी शशि मेनन का कहना है कि शहर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के बड़ी तादाद में पहुंचने से पहले से ही खाद्य सुरक्षा पर खतरा था। रविवार को अदन में पूर्व सहयोगी बलों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। दक्षिणी यमन की आज़ादी की मांग करने वाले अलगाववादी और सऊदी समर्थक सरकार के वफादार बलों के बीच झड़पें हुई हैं। यमन के गृहयुद्ध में अब तक ये बल साथ मिलकर हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे। अदन से संचालित सरकार और अलगाववादी नेताओं के संघर्ष विराम का ऐलान करने के बाद से झड़पें शांत हुई हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति का कहना है कि वो पोलैंड में नाजी कैंपों को अवैध करार देने वाले विधेयक की समीक्षा करेंगे। इसराइल ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि प्रस्तावित विधेयक के बाद यहूदी नरसंहार की सच्चाई को बयान नहीं किया जा सकेगा। रविवार को एक फोन कॉल में इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और पोलैंड के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खुली बातचीत के लिए तैयार हो गए। पोलैंड लंबे समय से कहता रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय पोलैंड में नाजी सेनाओं द्वारा स्थापित और संचालित डेथ कैंपों के प्रति वह जिम्मेदार नहीं है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पोलैंड को बिल में संशोधन करना ही चाहिए। उन्होंने कहा, इस बात पर गौर की जानी चाहिए कि हम सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने, इतिहास को दोबारा लिखने और यहूदियों के नरसंहार को नकारने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल मैंने इसका पुरजोर विरोध किया था और मैं आश्वस्त हूं कि कैबिनेट के सभी मंत्री भी ऐसा ही सोचते हैं। रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी को रिहा कर दिया गया है। उन्हें राजधानी मॉस्को में एक रैली से हिरासत में लिया गया था, जहां वो मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के बहिष्कार की अपील कर रहे थे। उनके वकील ने बताया है कि उन्हें आगे तारीख पर अदालत में पेश होना होगा, जहां उन पर आरोप तय किए जा सकते हैं। चुनावों के बहिष्कार की मांग के लिए रूस के कई शहरों में आयोजित प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हुए हैं। रूस पर नजर रखने वाले एक समूह का कहना है कि प्रदर्शनों के दौरान 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में जमा हुए प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हम डरे हुए नहीं हैं। यह है सेंट पीटर्सबर्ग से आवाजें, जहां चुनावों का बहिष्कार करने की अपील कर रहे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। नवाल्नी पर चुनावों में भाग लेने पर रोक है। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति पुतिन को जिताने के लिए चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है। वहीं रूसी अधिकारियों का कहना है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। उत्तरी इथियोपिया में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन अब चौथे शहर में फैल गए हैं। इथियोपिया की मीडिया के मुताबिक अब सिरीन का शहर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं मेरसा शहर में 11 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। बीते सप्ताह वेल्डिया शहर में प्रार्थना कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 5 लोगों की मौत के बाद से ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं। ताज़ा हिंसा उस समय हुई है जब अफ्रीकी संघ इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में सम्मेलन कर रहा है। मिस्र के कई प्रभावशाली लोगों ने मार्च में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की है। बहिष्कार की मांग करने वाले इन लोगों का कहना है कि वो चुनावों को निष्पक्ष होने से रोकने के लिए मिस्र के शासन और सेना के इस्तेमाल की आलोचना करते हैं। राष्ट्रपति चुनावों में सभी प्रतिद्वंद्वियों ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी अकेले मैदान में हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। यमन में कभी साथ रहे राष्ट्रपति अब्दुरबू मंसूर हादी के समर्थक बल और दक्षिणी अलगाववादी अब आमने सामने हैं। अलगाववादियों ने अदन शहर में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। यमन पहले से ही गृहयुद्ध से जूझ रहा है और अब इस नए मोर्चे के खुल जाने से हालात और खराब हो सकते हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
दक्षिणी यमन के अदन में अलगाववादी बलों ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति अब्दुरबू मंसूर हादी के वफादार सरकारी सैन्य बलों और अलगाववादियों के बीच कई जगह हिंसक झड़पें हुई हैं। वहीं प्रधानमंत्री अहमद बिन दागेर ने अलगाववादी बलों पर तख्ता पलट करने के आरोप लगाए हैं। रविवार को शुरू हुए इस संघर्ष में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। इसी बीच मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ताजा लड़ाई यमन में पहले से खराब हालातों को और मुश्किल कर देगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के यमन में अधिकारी शशि मेनन का कहना है कि अदन में खाद्य सुरक्षा पहले से ही खतरे में है। शशि मेनन कहते हैं,
एडन हैज रिसेंटली सीन अ बिग इन्फ्लक्स ऑफ इंटरनेट डिस्प्लेस्ड पीपल एंड ऑलरेडी
अदन में हाल के दिनों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग बड़ी तादाद में आए हैं। यहाँ पहले से ही खाद्य असुरक्षा है और जरूरी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब ये फिर से शुरू हो गया है। हम नहीं जानते कि ये सब कब तक चलेगा और इससे मौजूदा हालातों पर क्या असर होगा। ऐसे में ये निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है। लोग पहले से ही मुश्किल हालात में हैं। किसी भी तरह की लड़ाई पहले से नाजुक परिस्थितियों को और खराब कर देगी। राजधानी सना के हूती विद्रोहियों के कब्जे में आने के बाद से अदन हादी सरकार का अस्थायी मुख्यालय है। स्वतंत्र दक्षिणी यमन की मांग करने वाले अलगाववादी और हादी समर्थक बल अब तक हूतियों के खिलाफ साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन अब अदन में ये दोनों बल आमने सामने हैं। यमन के राष्ट्रपति अब्दुरबू मंसूर हादी के सैन्य सलाहकार मोहम्मद अली अल मकदाशी कहते हैं, हूती विद्रोहियों या वैध सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वालों में कोई फर्क नहीं है। ये मायने नहीं रखता कि वो कौन है, दक्षिण से हैं या पूर्व से। जो वैध सरकार के साथ नहीं है वो उसका विद्रोही है और उसे पूरे देश का ही दुश्मन माना जाएगा। वहीं दक्षिणी यमन के प्रति वफादार एक कमांडर मुख्तार अल नब कहते हैं, हम सभी लड़ाकों से आग्रह करते हैं कि वो वापस लौटें और हमारे रक्षा मंत्रालय को मजबूत करें और ऐसा सच्चा शासन पैदा करें जो सभी के लिए न्याय और बराबरी सुनिश्चित करे। अलगाववादी प्रधानमंत्री अहमद बिन दागेर को हटाने की मांग कर रहे थे। उन्हें हटाने की समय सीमा रविवार को समाप्त हो जाने के बाद दोनों ओर से लड़ाई छिड़ गई थी। सऊदी अरब में रह रहे राष्ट्रपति हादी ने संघर्ष विराम की अपील की है, जिसके बाद उनकी सरकार ने अपने समर्थक बलों को वापस लौटने का आदेश दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक जिस समय अदन में यह संघर्ष शुरू हुआ वहां मौजूद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। वहीं अलगाववादी बलों के भी पीछे हट जाने के बाद अब अदन में हिंसा थम गई है, लेकिन पहले साथ रहे इन बलों के आमने सामने आने के बाद यमन संकट के और गहराने का खतरा पैदा हो गया है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रही हादी सरकार को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन हासिल है। सालों से चल रहे गृह युद्ध की वजह से यमन की बड़ी आबादी के सामने भूखमरी जैसे हालात हैं।
दिलनवाज पाशा बता रहे थे कि यमन में अब किस तरह से हालात और खराब हो सकते हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आज से भारतीय संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। दो चरणों में होने वाले इस सत्र का पहला चरण 9 फरवरी तक चलेगा और इसी दौरान देश का आम बजट भी पेश किया जाना है। ये मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार पर अपने वादों पर खरा उतरने का बहुत दबाव है। इसी पर सुनिए मानसी दास की रिपोर्ट।
आज से शुरू होने वाला संसद का बजट सत्र इस बार दो चरणों में होगा। पहला चरण 9 फरवरी तक चलेगा। मध्यावधि अवकाश के बाद दूसरा चरण 5 मार्च से शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर माना जा रहा है कि इस बार भाजपा सरकार जनता का भरोसा हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी और अपने हर उस वायदे को पूरा करने की कोशिश करेगी जो उन्होंने बीते लोकसभा चुनावों के दौरान किए थे। भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कहते हैं,
ये सही है कि ये चौथा बजट होगा और बहुत सारी अपेक्षाएं देश को है और हम उस अपेक्षा पर खड़े उतरेंगे, ये पूरा यकीन है।
वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल के वक्त में नोटबंदी, जीएसटी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर चुकी विपक्षी पार्टियां एक बार फिर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगी। हाल में संपन्न हुए शीत सत्र में कांग्रेस आक्रामक तेवर लिए नजर आई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सत्र के दौरान भी सरकार पर हमला करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी। शाहनवाज हुसैन कहते हैं,
कांग्रेस तो बिना विषय के भी आक्रामक ही रहती है। कोई ऐसा सेशन नहीं रहा जिसमें कांग्रेस आक्रामक न हुई हो और उनका इरादा बजट में या किसी भी सेशन में डिबेट का नहीं होता है बल्कि हर्डल खड़ा करने का होता है। तो उनका जो भी इरादा हो, हमें पूरी उम्मीद है कि बजट सेशन में हाउस चले, अपनी बात को वो डिबेट में रखें।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपने किसी वायदे पर खरी नहीं उतरी है और विपक्ष जनता के पक्ष में सरकार से सवाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस नेता शकील अहमद कहते हैं,
सब मुद्दों पर जो जनता को परेशानियां है उन पे और बजट पे आपने अपने पूंजीपति साथियों की मदद के लिए बजट प्रस्तुत किया है, इस देश के 125 आम करोड़ आम लोगों के लिए बजट प्रस्तुत किया है। ये स्वाभाविक रूप से इस पर नजर रहेगी विपक्ष की, कांग्रेस की भी खास करके, और हम देखेंगे कि देहात में जो लोग हैं, जो हमारे मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए आपने क्या किया, जो हमारे गांव और समाज के लोग हैं उनके लिए क्या किया। तो स्वाभाविक रूप से सब चीज पर नजर रहेगी और देश में जो घटनाएं हो रही है स्वाभाविक रूप से उस पर भी चर्चा होगी। जो माहौल देश का बनाया जा रहा है उस पर भी चर्चा होगी कि देश कैसे चले शांतिपूर्वक, विकास और तरक्की कैसे करे।
शकील अहमद का कहना है कि सरकार अर्थव्यवस्था की हालत में सुधार करने में नाकाम साबित हुई है।
सारे प्रपोजल्स हमारे स्कीम है, एक भी नई स्कीम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 4 साल में लागू नहीं किया। और जो हमारी स्कीम थी, चाहे वो आधार हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो मनरेगा का मामला हो, ये सब हमारी ही योजना लागू की। लेकिन हमारी योजना अगर लागू अच्छे से करते तो हम खुश होते, लेकिन हमारी योजनाओं को बहुत भोंडे तरीके से, बहुत भद्दे तरीके से लागू किया। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, इस सरकार को हमारी नकल करने की भी अकल नहीं है।
लेकिन इस बार का बजट सत्र केवल अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों तक ही सीमित रहेगा ऐसा नहीं लगता। हाल में हुए घटनाक्रम पर नजर डालें तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार संसद में महिला सुरक्षा, महिला अधिकारों, 3 तलाक, न्यायपालिका में शिकायत के स्वरों के उठने और देश की सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने पर भी चर्चा छिड़ सकती है। मानसी दास, BBC दिल्ली।
हमारी सहयोगी मानसी दास ने वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार M.K. वेणु से बात की और पूछा कि बजट सत्र में सरकार किन किन मुद्दों पर घिर सकती है।
ऐसे टाइम पे आखिरी बजट इनको मिला है जब जो अर्थव्यवस्था खराब होती दिख रही है और पिछले अगर आप 3 साल के जो GDP ग्रोथ के आंकड़े देखें, 2015-16 में 7.9% था, 2016-17 में 7.1 हो गया और लेटेस्ट जो इन्हीं के सरकार की आंकड़े बताते हैं 6.5 2017-18 में GDP ग्रोथ दिख रहा है। और आपको याद होगा मोदी जब आए थे उन्होंने कहा था कि किसानों को पहले बोला था कि लागत पे 50% मुनाफा मिलेगा और फिर बाद में पिछले साल फिर कहा कि किसानों की जो उनकी जो इनकम है उनको डबल किया जाएगा 2022 तक, मगर ये कुछ होता नहीं दिख रहा। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और डिमोनेटाइजेशन के दौरान और भी स्थिति खराब हुई है छोटे उद्योगों की। इसको ठीक करने का एक प्रयास होगा ये आखिरी बजट। लोग ये देख रहे हैं कि बजट में लोगों को कुछ राहत मिलेगी कि नहीं, किसानों को मिलेगी कि नहीं, बेरोजगारों के लिए कुछ स्पेशल, खासकर जो कृषि क्षेत्र में, उनको कुछ मिलेगा कि नहीं। गुजरात के चुनाव में इन्होंने खुद बोला बाहर आके कि टक्कर थी बहुत और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इलेक्शन निकाला है। ये प्रधानमंत्री ने खुद अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स को बोला कि मैं ही जानता हूँ कितने मुश्किल से मैंने ये इलेक्शन निकाला है।
बीते 2-3 साल में जब भी संसद का सत्र बैठा है उसमें जीएसटी का मुद्दा जरूर गरमाया है, उसमें नोटबंदी और अर्थव्यवस्था का मुद्दा जरूर विपक्ष ने उठाया है। इस बार आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे विपक्ष लेकर आएगी और किन पर बीजेपी को उत्तर देना मुश्किल पड़ सकता है?
देखिए, अर्थव्यवस्था से जुड़े मामले तो बजट जब पेश होगा तब उससे पहले गरमाएगा, मगर एकदम खुलते ही, जैसे कल सत्र खुलते ही, जैसे ये पद्मावत और जिस तरह की जो चीजें हो रही है, जिस तरह देखा गया है कि बीजेपी की सरकारें कई राज्यों में बिल्कुल हेल्पलेस एक स्पेक्टेटर बन के उन्होंने देखा है कि करनी सेना और जिस तरह के जो कई जो हिंदुत्ववादी, जिस तरह इन्होंने बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक म्यूट स्पेक्टेटर के तरह देख रही है, तो इन इश्यूज पे काफी सवाल उठेंगे। और दूसरा, ये जो चार जो जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, और इस सत्र में इसकी भी बात होगी कि इस सरकार ने जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के, जो डेमोक्रेटिक हमारे डेमोक्रेसी के जो बड़े पिलर्स हैं, उन इंस्टीट्यूशन को किस तरह इन्होंने इस सरकार ने ट्रीट किया, ये भी बड़ा एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का एक अभियान चला रही है और ऑपोजिशन ने भी शुरू कर दिया। कल शरद पवार जी ने भी, जो एक वरिष्ठ नेता है ऑपोजिशन के, उन्होंने भी कहा कि ऑपोजिशन को इस इश्यू पे आना चाहिए कि भाई किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रहार हो रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार एमके वेणु बता रहे थे कि इस बार बजट सत्र में कौन कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं। और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से छपे अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। काफी देर से अखबारों को आप उलट पलट रहे हैं, क्या खास नजर आ रहा है?
जी आदर्श, बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और अखबारों में भी इससे जुड़ी हुई खबरें हैं। नव भारत टाइम्स बता रहा है कि सरकार का फोकस 3 तलाक बिल कबूल कराने पर होगा और यही खबर आज के एक और अखबार में पहले पन्ने पर है
जी।
इसके अलावा द हिंदू लिखता है, हिंदू ने जो विपक्ष के बयान को सुर्खी बनाते हुए कहा है कि सरकार बजट सत्र को लेकर गंभीर नहीं है। इसके अलावा रोजर फेडरर की तस्वीर आज सभी ज्यादातर अखबारों में पहले पन्ने पर है। इंडियन एक्सप्रेस पे मैं देख सकता हूँ वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीती गई ट्रॉफी को चूम रहे हैं और 36 वर्षीय रोजर फेडरर का ये 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, छठी बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता।
बिल्कुल, लगातार 15 साल से वो खेल रहे हैं
जी, बिल्कुल। और इसके अलावा कासगंज में गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा शुरू हुई थी उससे जुड़ी हुई खबरें आज के अखबारों में पहले पन्ने पर हैं। अखबार बता रहे हैं कि वहां तनावपूर्ण शांति है लेकिन रात में आगजनी हुई है, ये अमर उजाला और दैनिक जागरण आज के बता रहे हैं। आदर्श, आपको याद होगा अभी से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी को लेकर एक टिप्पणी की थी पकोड़े बनाने वाली जी, और उस पर काफी चर्चाएं हुई थी। आज का नई दुनिया बता रहा है कि बेरोजगारी से हालत कितनी खराब है। बीई, बीसीए, एमएससी की डिग्री लेकर लोग चपरासी का इंटरव्यू देने पहुंच रहे हैं और अखबार ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि देवास में 34 पद हैं जहां 8,000 लोगों ने आवेदन किया है, बड़वानी में 5 पद हैं, 1,500 लोगों ने आवेदन किया है और बेरोजगार लोगों की लंबी कतार की तस्वीर जो है अखबार ने प्रकाशित की है
जी।
एक और रोचक खबर मध्य प्रदेश से कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। आमतौर पर लोगों को पुलिस की जरूरत होती है तो वो 100 नंबर कॉल करते हैं, वहां अपराधियों ने 100 नंबर कॉल करके पुलिस की जीप बुलाई, गाड़ी को अगवा किया और एक लड़की का अपहरण उस पुलिस की कार से कर लिया।
ये वाकई चौंकाने वाली खबर
जी, ये अपराधियों 100 नंबर का किस तरीके से अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं ये खबर आज अखबारों में है। द हिंदू बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो सेना की गोलीबारी में 2 लोग मारे गए थे उस मामले में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सेना के 2 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, इसमें एक सेना के मेजर भी शामिल हैं। उड़ीसा की एक खबर ने हाल के दिनों में सुर्खी बनी थी, वहां एक गैंगरेप के शिकार दलित लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। इंडियन एक्सप्रेस ने उस परिवार की आपबीती बताते हुए कहा है कि परिवार किस तरीके से जिस लड़की ने आत्महत्या की है उसको न्याय दिलाने में संघर्ष कर रहा है। और एक रोचक खबर आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, इसके मुताबिक भारत में जो गैर विवाहित अविवाहित महिलाएं हैं उनमें कंडोम के इस्तेमाल करने के प्रति रुचि बढ़ी है और 6 गुना कंडोम का इस्तेमाल पिछले 10 सालों में बढ़ा है। ये अखबार ने जो है एक सर्वे के हवाले से ये खबर प्रकाशित की है जी। आदर्श
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दिलनवाज।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब सुनते हैं पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी।
मुझे भी बहुत खुशी हुई कि पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी के एम्बुलेंस दादा पद्मश्री करीमुल हक को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेल्फी लेना सिखाई। उम्मीद है कि किसी दिन मोदी जी भी करीमुल हक के गांव जाके उनसे मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चलाना सीख लेंगे, ताकि वो भी एम्बुलेंस दादा करीमुल हक की तरह किसी भी भेदभाव को खातिर में ना लाते हुए वक्त पड़ने पे हर बीमार और ज़ख्मी की जान बचाने के लिए उसे अस्पताल पहुंचा सकें। सोचिए ऐसी सेल्फी खुद मोदी जी के लिए कितनी कीमती होगी और देखने वालों के लिए तो इससे भी ज़्यादा। वैसे भी हमारे देशों में राजनीति के कैमरे से राजनेता सेल्फी लेने के अलावा और कर भी क्या रहे हैं, बल्कि मैं तो फैज़ अहमद फैज़ की आत्मा से दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए कहूँगा, मेरी सेल्फी के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आपके यहाँ अपने आप में डूबे मोदी जी सेल्फी वाले मशहूर हैं, तो हमारे यहाँ इमरान खान के बारे में उनके कुछ अशुभ चंद तक कहते हैं कि खान साहब का बस एक ही सलाहकार है और वो है उनका आईना, कि जिसके आगे वो वर्जिश करने के बाद कुछ देर खड़े रहते हैं और आईने में खड़े शख्स की सुनते भी हैं। इसी तरह पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ काम तो बहुत करते हैं, मगर उनके कामों से जलने वाले ये भी कहते हैं कि मियां साहब तो खुद इंसानी शक्ल में एक सेल्फी हैं। अगर किसी पुलिस मुकाबले में दो गुनाहगार या बेगुनाह अपराधी मर भी जाएं, तो उसकी बधाई भी अफसर लोग सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ को देते हैं, वाह वाह सर क्या पुलिस मुकाबला हुआ है आपके दौर में। बेवा को सिलाई मशीन भी दें तो उनका बस नहीं चलता कि इस मशीन पे अपनी तस्वीर जड़ दें, बल्कि हो सके तो ये सिलाई मशीन भी अपने हाथों खुद को दे के बेवा को सेल्फी दे दें। ये जो बड़े बड़े मंसूबे हैं कि जिनका जनता की मुसीबतें कम करने से दूर का भी लेना देना नहीं, ये भी सरकारों की सेल्फियां ही तो हैं। जैसे आपके यहाँ बुलेट ट्रेन और सरदार पटेल का स्टैचू बनाने की योजना, या हमारे यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत करोड़ों में से चंद लाख औरतों को 2000 रुपल्ली महीना देने, 3.5 करोड़ से अधिक अनपढ़ रह जाने वाले बच्चों की मौजूदगी में 20-25 दानिश स्कूल बना देने की योजना, या अस्पतालों के कॉरिडोर्स में पड़े मरीजों की देख रेख बेहतर बनाने पर खर्च करने की बजाय 2-3 ट्रॉमा सेंटर्स और 3-4 बर्न वार्ड्स बना देने की योजना। अब तो मुझे लोकतंत्र भी वो मोबाइल लगने लगा है कि जिससे नेता लोग अपने पीछे हुजूम खड़ा करके सेल्फी बनाते हैं और फिर बताते हैं कि हमें कितना समर्थन है और इस समर्थन के आधार पे अगले 5 वर्ष में कितनी और सेल्फियां लेने का अधिकार मिल गया है। जहां सेल्फलेस होने की ज़रूरत है, वहां सेल्फी से काम उतारा जा रहा है।
वसतुल्लाह खान की ये डायरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब समय है साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का। आज बात भारतीय क्रिकेट टीम की जीत और हार की और साथ ही इंडोनेशिया ओपन की, जिसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को रजत पदक मिला है।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
Our champion for 2018, Roger Federer.
Oh, I'm so happy. It's unbelievable.
ये थे साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग के विजेता, दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर, जिन्होंने खिताबी मुकाबले में कल क्रोएशिया के मारिन चिलिच को 5 सेट तक चले कड़े संघर्ष के बाद 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1 से हराया। उधर मिश्रित युगल वर्ग के फाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार हंगरी की टीमिया बाबोस, क्रोएशिया के पाविक और कनाडा की गैब्रियला डब्रोवस्की की जोड़ी से 6-2, 6-4 से हार गई। और हार का सामना करना पड़ा भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को भी, जो कल इंडोनेशिया मास्टर्स का फाइनल नहीं जीत सकी। फाइनल में चीन ताइपे की शीर्ष वरीयता हासिल ताइजू युंग ने ये फाइनल 21-9, 21-13 से अपने नाम किया। और अब समीक्षा, कैसे जीती भारत ने दक्षिण अफ्रीका में हारी बाजी और पाई खोई इज्जत।
जीत लिया ये टेस्ट मैच भारत ने, 5 विकेटें मिली मोहम्मद शमी को। विराट कोहली और उनकी टीम ने कमाल कर दिखाया है जोहानिसबर्ग में।
जी हाँ, जोहानिसबर्ग में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 63 रन से हराया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 5 विकेट ऐसे समय में झटके जब जीत के लिए 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 124 रन बना लिए थे। मैच का फैसला चौथे ही दिन हो गया, जबकि पिच तो पहले ही दिन से खतरनाक रुख अपनाए हुए थी। शायद इसीलिए भारत की पहली पारी महज 187 रन पर समाप्त हुई तो दक्षिण अफ्रीका भी केवल 194 रन पर सिमट गई। टीम के कोच रवि शास्त्री का अनुभव काम आया जब टॉस जीतकर दुविधा में फंसे कप्तान विराट कोहली।
ये बहुत कठिन डिसीजन था शुरू में, बैटिंग करे या फील्डिंग, लेकिन हमने जब क्रैक्स देखे ट्रैक पे हमने सोचा बैटिंग ही करो, जितना भी रन बनाए हम चौथी बार बैटिंग नहीं करना पड़ेगा।
और दूसरी पारी में भारत ने अजिंक्य रहाणे के 48, कप्तान विराट कोहली के 41, भुवनेश्वर कुमार के 33 और मोहम्मद शमी के 27 रनों की मदद से जैसे तैसे 247 रन बनाए और जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका के सामने 241 रनों का लक्ष्य रखा तो जैसे जीत की खुशबू तो आने ही लगी थी। लेकिन सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर ने बाउंसर खाने के बाद भी जिस दिलेरी से नाबाद 86 रनों की पारी खेली, उसने तो उन क्रिकेट पंडितों को भी हैरान कर दिया जो एक दिन पहले उनकी तकनीक में कमी निकाल रहे थे।
हाँ, दांत एल्गर की भी देनी होगी, दूसरे छोर पे सब छोड़ के चले गए लेकिन ये जनाब टिके हुए हैं।
और जब डीन एल्गर अनुभवी हाशिम आमला के साथ दूसरे विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी निभा गए तो लगा जैसे विकेट आसान हो गई है और मैच भारत के हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन इसके बाद एबी डिविलियर्स, कप्तान फैफ डुप्लेसी और क्विंटन डिकॉक बस पिच पर आए और जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा का शिकार होकर उल्टे पांव पेवेलियन लौटे तो कप्तान विराट कोहली की सांस में सांस आई।
इतना हेल्प नहीं मिला आज विकेट से, जो कैरेक्टर हम लोगों ने दिखाया है ये बिलीफ दिलाएगा कि हम ये दोबारा कर सकते हैं। काफी लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे थे लेकिन एज ए टीम हमें पता था कि हम पहले 2 मैचेस में भी क्लोज थे।
लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे लेकिन क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन ऐसा नहीं मानते।
ये अभी बहुत जल्दी है किसी कंक्लूजन में पहुंचना कि कोहली कर नहीं पाएंगे। ठीक है, 2 टेस्ट जो हारे हैं ये उनको सेटबैक है, एक छोटे से शॉर्ट टेम्पर्ड है जो दिखा भी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ सवाल जवाब दिखे हुए जो एक कप्तान को शायद करना नहीं चाहिए।
पहली पारी में 30 रन और 3 विकेट, दूसरी पारी में 33 रन और 1 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार प्लेयर ऑफ द मैच बने।
भुवनेश्वर कुमार वाज डिसाइडेड टू बी द मैन ऑफ द मैच।
कमाल की बात है कि भुवनेश्वर कुमार दूसरे टेस्ट मैच में टीम से निकाल दिए गए थे। वैसे शोर मचने के बाद अजिंक्य रहाणे भी टीम में लौटे और 48 रन बनाकर अपना बचाव भी कर गए। जिन्हें खोटा सिक्का समझा वो खरा निकले, जो भी हो देर आए दुरुस्त आए और अब 2-1 की हार भी बुरी नहीं लग रही।
So South Africa win the series 2-1.
उधर न्यूजीलैंड में खेले गए 4 देशों के आमंत्रण हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में कल बेल्जियम ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय तक 4-4 की बराबरी पर थी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, इस पर आप bbchindi.com पर आ सकते हैं और जान सकते हैं कि इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने किस तरह की तैयारी की है। साथ ही एक और मैं यहां पे एक दिलचस्प खबर देख रहा हूं कि फर्जी ट्विटर फॉलोअर बेचने वाली एक कंपनी जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं उसकी जाँच शुरू हो गई है। आप इसे पढ़ सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का खेल चल रहा था। तो आखिर में विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
सहायता समूहों का कहना है कि यमन के अदन में शुरू हुई नई लड़ाई से हालात और ख़राब हो सकते हैं। रविवार को अदन में पूर्व सहयोगी बलों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति का कहना है कि वो पोलैंड में नाजी कैंपों को अवैध करार देने वाले विधेयक की समीक्षा करेंगे। इसराइल ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि प्रस्तावित विधेयक के बाद यहूदी नरसंहार की सच्चाई को बयान नहीं किया जा सकेगा। रूस में विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी को रिहा कर दिया गया है। उन्हें राजधानी मॉस्को में एक रैली से हिरासत में लिया गया था जहां वो मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के बहिष्कार की मांग कर रहे थे। उत्तरी इथियोपिया में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन अब चौथे शहर में फैल गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब सिरिनका शहर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं मेरसा शहर में 11 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। मिस्र के कई प्रभावशाली लोगों ने मार्च में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की है। राष्ट्रपति चुनावों में सभी प्रतिद्वंद्वियों ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी अकेले मैदान में हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मीना कोटवाल ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।